તારીખ 7/5/1992 શ્રી સમયસર કળશ ટીકા શ્લોક 27 અને 28 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 19. મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
તીર્થંકર સ્તવ તરંગલાત આત્માંગયો એકત્વ ન ભવે. આ કારણથી પરમેશ્વરના શરીરની સ્તુતિ કરતા આત્માની સ્તુતિ થાય છે એમ જે મિથ્યામતી જીવ કહે છે તેના પ્રતિ શરીરની સ્તુતિ કરતા આત્માની સ્તુતિ થતી નથી. આત્માના જ્ઞાનગુણની સ્તુતિ કરતા આત્માની સ્તુતિ થાય છે. આવા ઉત્તરના બળથી અર્થાત તે ઉત્તર દ્વારા સંદેહ નષ્ટ થઈ જવાથી ચેતન વસ્તુને આત્મા એટલે ચેતન વસ્તુને અને અંગો એટલે સમસ્ત કર્મની ઉપાધિને એ જ દ્રવ્ય પણ થતી નથી. જીવનો અધિકાર છે આ સમયસારનો જીવ અધિકાર છે. એમ કહેવું છે કે જે જીવ છે તે અજીવ નથી. કર્મ છે એનું પરિણામ છે એ સ્વતંત્ર છે. કર્મ છે તે જીવ નથી. કર્મ એટલે નસીબ માણસ નસીબ કે છે નસીબ માન છે નસેમ છે એ બધું જીવ નથી. ત્યાં જીવનો અધિકાર નથી, ત્યાં જીવનું કર્તવ્ય નથી, કાર્યક્ષેત્ર નથી. નો કર્મ એટલે શરીર આદિ સંયોગ એ પણ જીવ નથી, અજીવ છે. એટલે એમાં પણ એનું કર્તવ્ય કે કાર્યક્ષેત્ર હોઈ શકે નહીં. ત્યારે પેલા મિથ્યાવાદીએ એમ કહ્યું કે તમારા જૈન શાસ્ત્રોમાં તીર્થંકરની જે સ્તુતિ થાય છે એ સ્તુતિમાં તો તીર્થંકરના શરીરની સ્તુતિ તમે કરો છો. ભગવાનનું શરીર બહુ તેજસ્વી હોય છે, ભગવાનને વાણી આવી દિવ્યધ્વનિ નીકળે છે, ભગવાન આવો ઉપદેશ કર્યો હતો વાણી દ્વારા. તો આ તો શરીરનું વાણીનું પરિણામ તો જળ છે, અને જળનું પરિણામ હોવા છતાં તમે સ્તુતિ તો ચેતનના બદલે જળ નહીં કરો છો. તો શરીરના આત્મા એક છેડ્યા કરી તમારા શાસ્ત્રો છે પરમેશ્વરના શરીરની સ્તુતિ કરતા આત્માની સ્તુતિ થાય છે એમ જે મિથ્યામતી જીવ કહે છે તેના પ્રત્યે ઉત્તર આપ્યો કે શરીરની સ્તુતિ કરતા આત્માની સ્તુતિ થતી નથી. આત્માના જ્ઞાનગુણની સ્તુતિ કરતા આત્માની સ્તુતિ થાય છે. ક્યારે સ્તુતિ થાય છે આત્માની? કે આત્માના જ્ઞાનગુણની સ્તુતિ કરવાથી. હિન્દી परमेश्वर के शरीर की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति होती है ऐसा वो मिथ्यामती जीव कहता है. उसके प्रति ऐसा उत्तर दिया कि शरीर की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति नहीं होती. आत्मा की स्तुति तो आत्मा के नानादि गुण की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति होती है. મુખ્ય રૂપ છે તો આત્મા જ્ઞાન પ્રધાન अमृत गुणों में भी ज्ञान प्रधान गुण रूप गुण वाला एक द्रव्य है, आत्मा एक द्रव्य है, लेकिन प्रधान गुण इसका ज्ञान है, ज्ञान प्रधान गुण वाला, इसलिए हर जगह ज्ञान की बात होती है।
चैतन्य गुण ने नहीं प्रधान कहवाए के जी पारिणामिक भाव छोटे
चैतन्य जैसे तो सब गुण पारिणामिक भाव रूप होते हैं, इसलिए द्रव का स्वरूप पारिणामिक लिया है, मूल द्रव का, ध्रुव द्रव का। और चैतन्य कहने पर उसमें ज्ञान दर्शन दो आ जाते हैं, ज्ञान चैतन्य का एक भेद है, चैतन्य विशेष को ज्ञान कहते हैं और चैतन्य सामान्य को दर्शन कहते हैं। दर्शन निराकार होता है, ज्ञान साकार होता है। तो दर्शन ज्ञान में भी ज्ञान प्रधान इसीलिए कि दर्शन जो है वो इतना सूक्ष्म परिणाम है चैतन्य का सामान्य रूप से, वो ग्रहण नहीं होता है, अनुभव में ग्रहण नहीं होता। और ज्ञान का ज्ञानानुभव जो है वो अनुभव गोचर होता है, इसलिए ज्ञान से आत्मा का समझाने का भी सरल होता है, समझाने वाले को समझने वाले को भी ये सब आकर की परिस्थिति है। तो प्रैक्टिकली ज्ञान से समझाया जाता है क्योंकि यहाँ से जीव अच्छी तरह समझ लेता है, समझ सकता है। ज्ञान को छोड़कर दूसरी दूसरी बातों से समझाने चाहे तो उतना सरल नहीं रहता है, अनेक गुणों की बातें तो चली है, फिर भी ज्ञान एक ऐसा विशिष्ट गुण है कि जिससे वो स्पेसिफाई हो सकता है।
एक इंद्रिय में जब ज्ञान गुण की दशा एकदम ज्ञानावरणीय कर्मों की वजह से जब दबी हुई होती है, चैतन्य गुण तो अभी भी
चैतन्य ज्ञान से अलग नहीं है। चैतन्य कहता ज्ञान दर्शन दो आ जाता है, और ज्ञान और दर्शन दोनों चैतन्य के ही विभाग है। चैतन्य सामान्य को दर्शन कहते हैं, चैतन्य विशेष को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मैंने अचैतन्य, ज्ञान मैंने खुद ही चैतन्य, लेकिन चैतन्य विशेष बस उतना फर्क है। तो सामान्य ग्रहण नहीं होता है, विशेष ग्रहण होता है, इसलिए स्पेसिफाई कर सकता है।
उपयोग और चैतन्य एक ही हो गया।
हाँ, ज्ञान का पर्याय है, उपयोग हो ज्ञान का पर्याय है, या तो उपयोग में दर्शन उपयोग भी बोले जाता है और ज्ञान उपयोग भी बोलने में आता है, और चैतन्य का उपयोग भी बोलने में दोनों आ जाता है। तो भेद करके बोले तो ज्ञान दर्शन, अभेद से बोले तो चैतन्य, बस एक ही बात है। कहने में भेद से कहे तो ज्ञान और दर्शन दो भेद है चैतन्य का, और अभेद से बोले तो चैतन्य ऐसा बोलना पड़े, बस कोई फर्क नहीं है। चैतन्य और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, इसलिए शास्त्र में तीन चेतना कही है। अध्यात्म शास्त्र में एक ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। तो ज्ञान में ज्ञान का संवेदन हो गए उसको ज्ञान चेतना कहते हैं, ज्ञान कर्म का वेदन में जाता है साता साता तो उसको कर्म चेतना कहते हैं, और उसका हरक्षोक रूप फल को भोगता है उसको कर्म फल को भोगता है उसको कर्म फल चेतना। ये तो वेदन तो चेतना में आता है, मुख्य तौर से ज्ञान की बात है। इस प्रकार उत्तर के बल से, अर्थात उस उत्तर के द्वारा संदेह नष्ट हो जाने से आत्मा मैंने चेतन वस्तु को, आत्मा का अर्थ क्या किया, आत्मा मैंने चेतन वस्तु को और समस्त कर्म की उपाधि को, अंगियो इतने इसके साथ जुड़े हुए उपाधि कर्म के एकत्व न भवे, एक द्रव्यपणा नहीं होता है, दोनों में एक द्रव्यपणा नहीं है, एक चेतन है एक अचेतन है, कर्म है वो अचेतन है, इसलिए आत्मा की स्तुति जिस प्रकार होती है उसे कहते हैं। अब आत्मा की स्तुति कैसे होती है वो कहते हैं, विराट स्वतंत्र देव का शरीर ऐसा तेजस्वी होता है, वो आत्मा की स्तुति नहीं थी, वो शरीर की स्तुति थी। लेकिन संयोग है, अंग यो हो, इसका अंग है, इसलिए उसकी स्तुति व्यवहार से कही, ऐसा कहने में आता है। पड़ोस का व्यवहार है, वो शरीर है वो पड़ोसी का व्यवहार है। जीव के साथ पड़ोस में रहने वाले को पड़ोसी कहते हैं। क्या व्यवहार है? तो भाई इसके यहाँ जो अच्छी चीज बनती है तो हमारे यहाँ आती है, हमारे यहाँ कोई अच्छी चीज बनती है तो उनके यहाँ जाती है। हमारे कोई सगाई नहीं होती है फिर भी मुरब्बे होते तो उसको काका कहते हैं, मामा कहते हैं, मासा कहते हैं, बराबरी के वाले होते तो भाई कहते हैं, लड़का होता तो बेटा भी कहते हैं। लेकिन कोई सगाई है कहने मात्र व्यवहार है उतना, और उतना अच्छा व्यवहार है कि जब हम इसके घर जाते हैं तो कहते हैं, अरे आपका ही घर है, आपको कभी रजा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई पूछे मैं आ सकता हूँ क्या आपका घर पे, आपको रजा लेने के लिए, तो आपका ही घर समझे। इतना कहने पर भी वो अपना समझने वाला नहीं है, समझे क्या?
नहीं,
वो कहेगा आपका घर है, लेकिन वो समझे कि नहीं, वो तो विवेक करते हैं, अपने अपना अपना सम्मान करते हैं, वास्तव में वो अपना घर है
नहीं,
नहीं। और अपना माने तो उपाधि हो जाए, पड़ोसी का घर को अपना मान ले तो अधिकार की उपाधि हो जाए, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। वो भी समझता है कि उनका आदर करते हैं कि ये आपका घर है, तो बिल्कुल प्रमाणिकता से अधिकार जमाने वाला नहीं है, और सगा भाई हुए और अधिकार जमाने की बात हुए तो उसको बोले नहीं कि ये घर आपका है, ये मेरा है तेरा
नहीं है,
ऐसा कहेगा। ये बात हो जाएगी ना, है भाषा कुछ भी हो, भाव क्या है वही समझना चाहिए, आशय ग्रहण करना चाहिए। समस्त कर्म की उपाधि को एक द्रव्य गुणा नहीं होता है। आत्मा की स्थिति जिस प्रकार होती है उसे कहते हैं कि वह जीव स्तुति, वह मैंने जीव स्तुति। एवं मिथ्या दृष्टि जिस प्रकार कहता था उस प्रकार नहीं है, मैंने शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति नहीं है। किंतु जिस प्रकार अब कहते हैं उसी प्रकार ही है कि काय आत्मनो व्यवहारतः एकत्व न तु निश्चयात्। शरीर और चेतन द्रव्य दोनों को कथन मात्र से एक पना है, व्यवहार मैंने क्या कहने मात्र कहते हैं कि ये हमारा मामा है, वास्तव में मामा पड़ोस में है, इसमें मामा कहते हैं या चाचा कहते हैं, तो एक व्यवहार है, कथन मात्र है, कहने मात्र है, कथन मात्र से है, एक पना मैंने निश्चय मैंने वास्तव से नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार सुवर्ण और चांदी इन दोनों को ओट कर लगाड़ी है, एक रहनी एक लकड़ी बना लेते हैं सब ठीक, तो उन सबको कहने में तो सुवर्ण ही कहते हैं। उसी प्रकार जीव और कर्म अनादि से एक क्षेत्र संबंध रूप मिले चले आ रहे हैं, इसलिए उन सबको कथन में तो जीव ही कहते हैं। सोनामा चांदी भेड़ गए तो के कहा सोना नहीं लग रही है, पर एम चांदी है एटलो चांदी है, सोनू है एटलो सोनू है, चांदी सोनू खात नहीं, दूध में पानी नाख्या पीने दूध ज कहवा, आ दूध है ये 8 रुपये लीटर है, आ दूध है ये 6 रुपये लीटर है, 25% पानी नाख्या पी शू दूध ज कहवा, छता पानी से दूध थे। अगर पानी दूध हो जाता तो कितना पानी डालते, पानी पीने को मिलता नहीं, नहीं मिले थे, ये हालत हो जाए, पानी कभी दूध होता नहीं। ऐसे शरीर का संबंध अनादि से है जीव को, संयोग संबंध, फिर भी जड़ पुद्गल है वो जीव होता नहीं, कभी नहीं होता, बनी नहीं सकता। इसी प्रकार जीव और कर्म अनादि से एक क्षेत्र संबंध रूप मिले चले आ रहे हैं, इसलिए उन सबको कथन में तो जीव ही कहते हैं। जीव तो शरीर से, क्योंकि ये मुर्दा है और ये जिंदा शरीर है, जीव तो शरीर, शरीर जीवे से
नहीं,
संयोग में जीव से माटे शरीर ने जीव तो क्यों, संयोग में जीव नहीं माटे शरीर ने मर्द क्यों, माटे शरीर तो दूसरे पक्ष से जीव कर्म को एक पणा नहीं है। दूसरे पक्ष से मैंने किस पक्ष से है कि निश्चया निश्चय मैंने वास्तविक खरे कर्म द्रव्य के निज स्वरूप को विचारने पर, निश्चय मैंने द्रव्य के निज स्वरूप को विचारे, जीव द्रव्य के निज स्वरूप को विचारे, तो जीव और कर्म को कभी एक पणा होता नहीं, न कभी हुआ भी है। भावार्थ इस प्रकार है कि सुवर्ण और चांदी यद्यपि एक क्षेत्र मिले हैं, एक पिंड रूप है, तथापि सुवर्ण पीला भारी और चिकना ऐसे अपने गुणों के लिए हुए हैं, और चांदी भी अपने श्वेत गुण को लिए हुए हैं। चांदी सफेद द्रिये से है, उन्हों पीलू द्रिये से, कोई पुताना गुण ने छोड़ता नहीं, इसलिए एक पणा कहना झूठा है। उसी प्रकार जीव और कर्म भी यद्यपि अनादि से एक बंद पर्याय रूप मिले चले आ रहे हैं, एक पिंड रूप है, जीव और कर्म भी यद्यपि अनादि से एक बंद पर्याय रूप मिले चले आ रहे हैं और एक पिंड रूप भी है संयोग में, तथापि जीव द्रव्य अपने ज्ञान गुण से विराजमान है, तथापि जीव द्रव्य अपने ज्ञान गुण से विराजमान है, कर्म पुद्गल भी अपने अचेतन गुण को लिए हुए हैं, जो पुद्गल अचेतन कर्म है उसमें ज्ञान का अभाव है, अचेतन है मन का ज्ञान का अभाव है, चेतन है उसमें ज्ञान है और अचेतन में ज्ञान नहीं होता, इसलिए एकपना कहना झूठा है, इसलिए एकपना कहना झूठा है, कहने में आवे लेकिन कहना झूठा है, सच सही नहीं है, बोलने नहीं, बोलने की बात है, इस कारण स्तुति में भेद है उसी को दिखलाते हैं कि व्यवहार तो वपुष स्तुतिया तो स्तोत्रम अस्ति न तत्तत्वतः, व्यवहारतः एटले बंद पर्याय रूप एक क्षेत्र अवगाह दृष्टि से देखने पर तीर्थंकर देव का शरीर और तीर्थंकर देव का आत्मा बंद पर्याय रूप एक क्षेत्र अवगाह है, ऐसी दृष्टि से देखने पर तो व्यवहार दृष्टि होगी, संयोग दृष्टि, वपुष एटले शरीर की, स्तुतिया एटले स्तुति करने से, शरीर की स्तुति करने से, नू एटले जीव की, स्तोत्र एटले स्तुति होती है, वो व्यवहार से होती है, निश्चय से होती नहीं है, व्यवहार से ऐसा बोलने में आता है, एक क्षेत्रावगा देख करते हैं, न पर दूसरे पक्ष का विचार करने पर स्तुति नहीं होती है, व्यवहार पक्ष से विचार करने पर स्तुति होती है, निश्चय पक्ष से विचार करने पर स्तुति नहीं होती है, તમારું શરીર છે એ તમારા જીવ, તમારું એટલે તમારા જીવ સાથે સંયોગ છે, આ શરીરને આ જીવ સાથે સંયોગ છે, આ જીવને એ શરીર સાથે સંયોગ છે, તો વ્યવહાર તો કરે તો જુદા પડે, જળ તો જળ છે ને ચેતન ચેતન છે, પણ આ મારું શરીર આ તમારું શરીર એમ કહેવું પડે, પણ એમાં કોઈ જીવનું શરીર નથી થઈ જતું, પણ વ્યવહાર તો એવી રીતે જ ચાલે, નહીંતર બેને જુદા કેવી રીતે પાડવા, માટે મારું શરીર ને તમારું શરીર એમ કહેવાય, इसलिए एक पक्ष से स्तुति होती है, दूसरा पक्ष से विचार कर पर स्तुति नहीं होती है। इस अपेक्षा से नहीं होती कि तत्वतः शुद्ध जीव द्रव्य का स्वरूप विचार करने पर, तत्व इसलिए शुद्ध जीव द्रव्य का विचार करने पर जीव की स्तुति, शरीर की स्तुति वो जीव की स्तुति नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार श्वेत सुवर्ण ऐसा यद्यपि कहने में आता है, चांदी मिल मिल भी हो सफेद सोनू है और रुपीलो सोनू है, तथापि श्वेत गुण चांदी का होता है, इसलिए श्वेत सुवर्ण ऐसा कहना है। सुवर्ण कभी श्वेत होता नहीं, इन काल में सोना कभी पीला होता है कभी सफेद होता
नहीं,
बोलने में आ गया ये सफेद सोना ये पीला सोना, लेकिन वो चांदी है। ऐसे उसी प्रकार भगवान की भी ऐसी स्तुति कही है कि दो रत्ता दो बे रत्ता बे सामला बे नीलुप लवन मरगज पन्ना दो विजिन सोलह कंचन वन, ये चौबीस तीर्थंकर में कैसे कैसे शरीर का कलर होता है। तो दो तो लाल रंग के होते हैं, दो काले रंग के सांवला मैंने काले रंग के होते हैं, दो नीले रंग के होते हैं जैसे वो अपने कपड़ा में गले लगाते हैं तो नीले रंग के दो होते हैं, और दो पन्ना के जैसे कलर के होते हैं, पन्ना जो हरा होता है वो हरा होता है, ऐसे आठ जीव तो दो दो ऐसे होते हैं, और सोल जो है तीर्थंकर तो कंचन मैंने सोलह रंग के वाले होते हैं, सोनेरी कलर वाले होते हैं। सोल तीर्थंकर का शरीर का कलर जो है, जीव को कलर नहीं होता क्योंकि उसमें कोई रंग गुण चैतन्य में नहीं है, ये पुद्गल में है। तो सोल भगवान के शरीर जो है स्वर्ण करण के होते हैं, जो लाल होते हैं, जो नीले होते हैं, जो नीले होते हैं, दो काले होते हैं, जैसे इसका अर्थ करते हैं क्या है इसका अर्थ। दो तीर्थंकर रक्तवर्ण, दो कृष्ण, दो नील, दो पन्ना और सोलह सुवर्ण रंग है, तो इस तीर्थंकर में ऐसा हमेशा रंग होता है। यद्यपि ऐसा कहने में आता है तथापि जो पूर्व कर्म है, ऐसा क्यों तीर्थंकर तो प्रकृति सबों का है लेकिन शरीर का कलर क्यों फिर गया, एक का सुवर्ण एक का काला, क्योंकि ये पूर्व कर्म है, वर्तमान पुरुषार्थ इसमें नहीं है कि वो अपना कलर बदल दे, ऐसा नहीं होता। यद्यपि ऐसा कहने में आता है तथापि श्वेत रक्त और पीत आदि पुद्गल द्रव्य के गुण है, जीव के गुण नहीं है, जीव में तो कोई वर्ण नाम का गुण ही नहीं है। इसलिए श्वेत रक्त और पीत ऐसा कहने पर जीव नहीं होता, ज्ञान गुण कहने पर जीव है, ज्ञान गुण सा मत दे दो कि जीव नो निर्देश करवो हो तो ज्ञान गुण थी एने कहवो पड़े, जुदो पाड़ी ने कहवो हो तो ज्ञान गुण थी वो स्पेसिफाई नहीं होता, खास लक्षण होना चाहिए जो अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष से रहित हो, दूसरे में नहीं हो, ऐसा लक्षण होना चाहिए, वो ज्ञान से जुड़ा पड़ता है। कोई प्रश्न करता है, यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि शरीर की स्तुति करने पर जो जीव की स्तुति नहीं होती तो जीव की स्तुति कैसे होती है, उत्तर इस प्रकार है कि चिद्रूप कहने पर होती है, चिद्रूप कहो चेतन रूप कहो ज्ञान रूप कहो, देखो या ज्ञान के जगह चिद्रूप कहा। निश्चयतः चित स्तुत्या एव चित स्तोत्रम भवति, निश्चयतः में शुद्ध जीव द्रव्य रूप विचार करने विचारने पर शुद्ध ज्ञान आदि चित्र और सुख शुद्ध ज्ञान आदि की बार बार वर्णन, क्योंकि मैंने क्या बार बार वर्णन बार बार स्मरण बार बार बदले लेना और बार बार अभ्यास, उसका वर्णन करे
का स्मरण करें विकल्प में और अनुभव करने का अभ्यास करें। ऐसा करने से निसंदेह चित्त स्तोत्र में के जीव की स्तुति होती है। क्या अर्थ निकाला? कि जीव की स्तुति कैसे होती है? कि जीव की स्तुति तो जो शुद्ध ज्ञान आदि इधर ज्ञान आदि लिया देखो चित्त में से क्या निकाला ज्ञान आदि आदि मैंने एक गुण की स्तुति नहीं करनी है। ज्ञान मात्र कहने से अनंत गुण उसमें समाविष्ट है। अनेकांत का प्रकरण में अमृत सिंहराचार्य ने कहा कि ज्ञान मात्र में क्या एकला ज्ञान गुण आता है? तो कहने इसमें तो सभी गुण आ जाते हैं। जीव के जितने भी गुण अनंत है वो
आ जाते हैं।
तो फिर मात्र क्यों कहा? तो मात्र इसलिए कहा कि भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म वो साथ में इसमें नहीं लेना है। उसको भिन्न करने के लिए अलग राख रखने के लिए मात्र शब्द लगाया है। स्पष्टीकरण दिया है शुद्ध ज्ञाने ज्ञानादि की बार बार वर्णन स्मरण अभ्यास करने से वर्णन करना तो ये वचन स्तुति हुई, स्मरण करना भाव स्तुति हुई, अभ्यास करना अनुभव करने की स्थिति हुई। तीव्र महिमा आने से अनुभव होता है। करने से निसंदेह जीव द्रव्य की स्थिति होती है। इसका भावार्थ इस प्रकार है वर्णन स्मरण ने अभ्यास अभ्यास विधि साथे आवे छे। वर्णन जाय छे वचन मां, स्मरण जाय छे विकल्प मां, अभ्यास जाय छे प्रयोग मां।
प्रयोग माने
प्रयोग अभ्यास त्यारे जीव ने स्तुति थाय। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार पीला भारी और चिकना सुवर्ण ऐसा कहने पर सुवर्ण की स्वरूप स्तुति है। सुवर्ण का वखान कर पता है कि भाई ये भी पीला है, आ सोनु केव सरस पीणू है, पीला शोभा है। उसी प्रकार केवली ऐसे हैं, वो केवली नहीं बात कर ऐसे सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव केवली कैसे हैं के जिन्होंने प्रथम ही शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव किया, तो सर्वप्रथम तो अपना शुद्ध जीव स्वरूप का भेड़ किया बिना द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का मिलावट किए बिना शुद्ध जीव जीव स्वरूप का अनुभव किया अर्थात इंद्रिय विषय कषाय को जीते हैं। क्या विषय कषाय पर जीत करके शुद्ध जीव द्रव्य का अनुभव किया। जिसको शुद्ध द्रव्य का अनुभव नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ? तो विषय कषाय में हारे हुए हैं वो जितेंद्रिय जीव नहीं है। 31 का था जो विषय कषाय में हार जाते हैं उसको विषय कषाय का अनुभव होता है ऐतिहासिक बात से। और जो उस पर विषय कषाय पर जीत पाते हैं वो जीन हो जाते हैं तो उसको शुद्ध जीव द्रव्य का अनुभव होता है। कि जिन्होंने प्रथम जिनेन्द्र केवली कैसा है कि जिन्होंने प्रथम चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव किया अर्थात इंद्रियों विषय और कषाय को जीते हैं। पहले जीते हैं बाद में मूल से क्षपण किया क्योंकि सत्ता में रहा था उस वक्त। जब अनुभव किया था तब सत्ता में से सब चले नहीं गए, योग्यता में सब गए नहीं, तो बाद में क्षपण किया पुरुषार्थ बढ़ा करके
क्षपण किया,
क्षय कर दिया, सकल कर्म क्षय किया है अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल वीर्य और केवल सुख रूप से विराजमान प्रगट है। ऐसा कहने पर ऐसा जानने पर और ऐसा अनुभव करने पर ये अभ्यास पथ अनुभव निकलता है। तीनों बोल लिया ना, बोलना वर्णन करना, स्मरण करना मैंने विचार करना जानना,
और फिर
ठीक है जानवा स्मरण विकल्प रही है। ऐसा कहने जानने और अनुभवने पर केवली की गुण रूप स्तुति होती है। तो क्या कहा, तीर्थंकर भगवान ने दिव्य ध्वनि में ऐसा कहा कि मेरी स्तुति शरीर की स्तुति जो है वो सही स्तुति नहीं है। तुम ये कहोगे कि आपको 1008 लक्षण है, 34 प्रतिहारी है, होते हैं 34 प्रकार के प्रतिहारी होते हैं, विशिष्ट प्रकार के संयोग होते हैं दिव्य ध्वनि वगैरह, और 8 प्रकार के अतिशय, 34 अतिशय,
8 प्रतिहारी
और 8 प्रतिहारी, 34 अतिशय होते हैं और 8 प्रतिहारी होते हैं, 8 प्रतिहारी होते हैं। तो ये सब संयोग है, मेरी स्तुति नहीं है, ये अतिशय चमत्कार भी मेरी स्तुति नहीं। मेरी स्तुति किसमें है, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल अतीन्द्रिय अनंत सुख, किसमें मेरी स्तुति है। सही सच्ची स्तुति होगी,
निश्चय स्तुति,
तब मेरी सही सच्ची स्तुति होगी। तुम तुम्हारा मैं तुम्हारा आत्मा का अनुभव करो तो मेरी सच्ची स्तुति है। केवली का आत्मा का अनुभव होता है दूसरे को, फिर अनुभव के बाद क्यों लिया, कि स्वयं का अनुभव करने से केवली की स्तुति होती है, ऐसी बात है।
शंकर भगवान की निश्चय स्तुति,
निश्चय स्तुति आत्मानुभव है, आत्मा का अनुभव करना, जो केवल ज्ञान केवल जिसमें अष्टगुण सहित है, ऐसा जो केवल परमात्मा स्वरूप है उसका अनुभव करना, जो स्वरूप है उस रूप में अनुभव करना, वही शंकर देव की सही स्थिति है। इससे यह अर्थ निश्चित किया कि जीव और कर्म एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। क्या सारांश क्या निकला, सिद्ध क्या किया लॉजिक से, कि जीव और कर्म भिन्न भिन्न है। तीर्थंकर के भी कर्म नो कर्म उदय है, वो जीव से भिन्न है, दोनों एक नहीं है, तीन काल में नहीं है। अधिकार तो जीव जीव का है ना, जीव में जीव है वो अजीव नहीं, अजीव है वो जीव, यही तो कहना है। विवरण, जीव और कर्म एक होते तो इतना स्तुति भेद कैसे होता, जो जीव और कर्म एक होता, जीव और शरीर एक होता, तो दोनों को एक माना जाता, लेकिन है पड़ोसी कितना भी कह गए आपका ही घर है, लेकिन एक चीज को अधिकार जमाने की बात होती
नहीं है।
ऐसे वो जो चालू प्रकरण था उस पर ये बात चली है, 31, 32, 33 गाथा जो उसमें सार की है उस पर ये विषय चला। अब कह सके जहाँ जहाँ ऐसी बात आती हो, जहाँ भी जीव को शरीर के साथ शरीर के से बताते बताया जाता हो, या शरीर को जीवित बताया जाता हो, कुछ भी हो, नए विभाजन से समझना, नए का विभाग कर लेना, एक व्यवहार है एक नए का प्रयोग कर लेना। ऐसा आचार्य महाराज यहाँ फरमाते हैं, इति परिचित तत्व ही आत्मकायित एकतायां में विभजन युक्त्या अत्यंत शुद्ध उच्छिद्दा उच्छिद्दितायां अवतरति न बोधो बोधम एव अद्य कस्य सरसव सुप्रष्टः प्रस्फुटं एक एव। खंडानंद सहित इति कस्य बोध बोधम अद्य न अवतरते। हमें कैसे कि अभी चौथी बात व्यवहार निश्चय नहीं, व्यवहार से और निश्चय से स्पष्ट अलग अलग बात करके समझाया हो तो किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। देखो क्या प्रश्न उठाया आचार्य महाराज ने कि इस प्रकार भेद द्वारा समझाने पर, जीव और अजीव का भेद डालकर समझाने पर, त्रैलोक में ऐसा कौन जीव है जिसके जिसकी ज्ञान शक्ति स्वस्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभवशील रूपता से आज भी नहीं परिणमनशील हुए। अच्छा अच्छा शू कह आचार्य महाराज कैसे कि आखू समझाए तो त्रण लोक में एवं कौन जीव हो કે જેની જ્ઞાન શક્તિ દ્વારા એ સ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ અનુભવશીલ ન થાય, પરિણમને ન થાય। શ્રી ગુરુ પ્રશ્ન કરતે હૈ, ફિર શિષ્ય કો બોલના પડતા હૈ કે મહારાજ તીન લોક મે એસા જીવ તો નહીં હો સકતા કે આપકે જૈસે સમર્થ ગુરુ ઉપદેશ કરે, જીવ કા સ્વરૂપ સમજાવે और उसको अनुभव नहीं हो गया। ऐसा तो तीन लोग में कोई जीव नहीं हो सकता है। तो तुमको अनुभव हुआ तो मुझे अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए मैं तो जीव ही नहीं रहा। आपकी नजर में, निगाह में मैं तो अजीव हो गया। क्या हुआ? अमृतचंद्राचार्य प्रश्न करता है कि तीन लोक में ऐसा कौन जीव होगा कि जिसको अनुभव नहीं होगा। ऐसी बात सुनते जो जड़ होगा उसको अनुभव नहीं होगा, जड़ को अनुभव नहीं होता, जीव को तो होता है। कई बात करी ऐसी समीचार की बात, तो जीव को अनुभव करे, करावे ही करावे ऐसी बात है, फिर भी जीव नहीं करता है तो जड़ जैसा हो गया है तो नहीं करता है, ऐसा कहते हैं। जोर से बोलेगा कि त्रैलोक्य में ऐसा कौन जीव है, तो नजर नहीं आता है कि जीव है। और ऐसी बात तो सुन करके जीव जीवत्व को अनुभव नहीं करे। एक जीव को उसका जीव स्वभाव बता दे और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बतावे और अनुभूति नहीं करे, उसको जीव कैसे कहेंगे? उनका उसको जीव भी क्या कहना? जड़ है वो सुनता नहीं, जड़ को उपदेश परिणमता नहीं, ऐसा उपदेश तो जीव को परिणमे ही परिणमे, ऐसा कहते हैं आचार्य महाराज ने। अपने सामने जिसको समयसार वो सुना रहे हैं उसको ऐसा रखा है कि मेरा उपदेश सुनते ही उसको परिणमन हो जाएगा। क्या
हो जाएगा?
मेरा उपदेश सुनते उसको अवश्य अवश्य अनुभव हो जाएगा। ऐसा पात्र जीव को सामने रख करके समयसार चलाते हैं, निकालते हैं आत्मा में से श्लोक निकालते हैं। जिसको अनुभव नहीं हुए इसको नजर में नहीं लिया, उसको तो जड़ जड़ समझे हैं कि ये तो जड़ जैसे है, वो नहीं समझेंगे। जड़ है वो नहीं समझता, जड़ जैसा भी
नहीं समझता। नहीं।
ठीक है, राजमल जी ने एक आदमी से कश्य कौन कश्य मत कह दी कश्य मैंने तीन त्रैलोक में ऐसा कौन जीव है, ऐसा જોર છે ને, પોતાનો જોર છે એ ઉપર છે એમ લાગે છે કે રાજમલજીએ ટીકા લિખી હોય તો ઉનકો એસા તો સ્પષ્ટ અનુભવ હુઆ હૈ કે એસી ટીકા સે અનુભવ હોઈ જાતા હૈ, મુજે તો હુઆ। તો તીન લોકોને કહો એસા કોણ કોણ જે હોગા જિસકો નહીં હુઆ, એસા લે લીયા અપને ઉપર સે। जब आदमी 12 बजे भोजन कर लेता है तो वो भी बहुत अच्छा खाए तो उसको दिमाग में क्या है कि कोई भूखा नहीं है, दुनिया में कोई
भूखा नहीं,
अपन अपनी तृप्ति से क्या भाव आता है उसको, तो कोई भूखा है ऐसा स्मरण भी नहीं इसको हो सकता है। तृप्ति ऐसी चीज है कि दूसरा कोई भूखा है ऐसा विकल्प नहीं उठता है, ये होता है कि नहीं होता है। हमेशा अपन खाते हैं, जैसे सबों ने जम लिया, हमने खा लिया तो सबों ने जिम लिया, ऐसे समय सार की टीका से अनुभव किया तो अनुभव करने वाले कहते ऐसा कौन जी होगा कि जिसको ऐसी वाणी सुन के अनुभव नहीं होगा, तीन लोग में तो हो ही नहीं। तो दलील करेगा नहीं है, है ऐसा भी है तो वो जड़ है, तो जीव नहीं है, अगर है तो वो जीव नहीं है जड़ है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव कर्म का भिन्नपना अति ही प्रकट कर दिखाया। यहाँ पर जीव और कर्म का भिन्नपना अति ही प्रकट कर दिखाया। नसीब नसीब करे ने सामान्य मानस मानस करे भाई अमर नसीब एवं अमारो उदय एवो, એટલે કે કર્મ એ જીવ છે, એ તો અમારો ઉદય એટલે કર્મ, તે જીવ થઈ ગયો। જ્યોતિષમાં જતા છે એની કેટલી બધી હશે, જો જ્યોતિષ કે પાસ હસ્તરેખા દેખાતે હૈ, કુંડલી દેખાતે હૈ, ઉસકો તો કર્મ મે જીવત્વ કી તીવ્ર બુદ્ધિ હો ગઈ। क्योंकि नसीब तो पुद्गल है, कर्म तो पुद्गल है, संचित कर्म भी पुद्गल है, जीव इससे बिल्कुल भिन्न है। फिर देखो तो मेरा नसीब कैसा है, कि तुम जड़ है फिर तेरा नसीब का मुझे क्या कहना। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव कर्म का भिन्नपना अति ही प्रकट कर दिखाया। उसे सुनने पर जिस जीव को ज्ञान नहीं उत्पन्न होता उसको उलाना है। उलम्बो आप कही से हिंदी मैंने उलाना कैसे उलम्बो, आटल बधु प्रकट कर देखाय छता तेने ज्ञान थत नहीं भिन्न आत्मा જળ જેવો લાગે છે, એમ કરીને ઉલંબો એને આપવામાં
આવે છે।
ઠપકા
ઠપકો દીધો
ગુજરાતીમાં ઠપકો થાય, ઉલા ના એટલે ઠપકો થાય, ઉલંબો ઉપયોગ ઠપકો ઉપયોગ પ્રેમથી ઠપકો આપે એને એને ઉલંબો ને ઉલાનો કહેવાય છે। પ્રેમથી બહુ પ્રેમ હોય ને માણસને તો ઉલંબો આપે, અને દ્વેષથી પણ ઠપકો, ઠપકો તો બે રીતે અપાય છે, દ્વેષથી પણ ઠપકો આપે અને પ્રેમથી પણ ઠપકો આપે, પ્રેમથી ઠપકો એને ઉલંબો ને ઉલાના કહેવાય છે। હિન્દીમાં ઠપકો તો બે પ્રકારે હોય છે, આ પ્રેમથી વાત, દ્વેષથી નથી, હિત બુદ્ધિથી, પ્રેમથી એટલે હિત બુદ્ધિથી, કે સામાજીવનું પણ હિત થાય એમાં। किस प्रकार से भेद द्वारा समझाने पर उसी भेद प्रकार को दिखलाते हैं, कई रीते भेद पड़ो ये हमें देखना दिखाड़े कि आत्मकाय ही काय एकतायाम परिचित तत्व ही नई विभजन युक्तिया अत्यंतम उच्छेदात उच्छादितायाम आत्म एक चेतन द्रव्य। કાય એટલે કર્મ કા પિંડ, પુદ્ગલ કા પિંડ, એકતાયામ એટલે એકત્વ પણ આખો, એ ત્રણ શબ્દનો ભાવાર્થ કરે છે। ભાવાર્થ ઈસ પ્રકાર હે કે જીવ કર્મ અનાદિ બંધ પર્યાય રૂપ એક પિંડ હે, અનાદિથી એનો સંયોગ છે, ક્યારે એકલો શુદ્ધ જીવ જુદો રહ્યો નથી, અનાદિથી બંનેનો સંયોગ ચાલ્યો આવે છે। ઉસકો પરિચિત તત્વ છે, પરિચિત તત્વ એટલે સારી રીતે જેને તત્વોનો પરિચય છે, જળનો અને ચેતનનો, એવા જે સર્વજ્ઞ સર્વજ્ઞ હૈ, પરિચિત તત્વ એટલે સર્વજ્ઞ હૈ, વિવરણ સર્વજ્ઞ કેવા છે कि परिचित मैंने प्रत्यक्ष जाना है, तत्वहित जीवादि समस्त द्रव्यों के गुण पर्यायों को जिन्होंने ऐसे सर्वज्ञ देव के द्वारा नहीं विभजन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नहीं पक्षपात नहीं पक्षपात के विभाग भेद रूप युक्त एक भिन्न भिन्न स्वरूप वस्तु को साधना उससे अत्यंत अति ही निसंदेह रूप से जिस प्रकार ढंकी निधि को प्रकट करते हैं उचितताया उचितता अर्थ कर रहे हैं जिस प्रकार ढंकी निधि को प्रकट करते हैं उसी प्रकार जीव प्रकट ही है, परंतु कर्म संयोग से ढंका हुआ होने से मरण को प्राप्त हो रहा था तो वह भ्रांति परम गुरु श्री तीर्थंकर देव के उपदेश सुनने पर मिटती है। कर्म संयोग से भिन्न शुद्ध जीव द्रव का अनुभव होता है और ऐसा अनुभव सम्यक तो है। क्या बात ले गया आत्मा कर्म आत्मकाय ही एकतायाम परिचित तत्व नए विभजन युक्त्या अत्यंतम उच्छिद्धतायाम कह देखें कि आत्मा ने कर्म अनादि से संयोग में एक जैसा चला आ रहा था, जैसा शरीर का आकार ऐसा आत्मा का आकार, आत्मा का आकार ऐसा शरीर का आकार, तो ऐसा ही लगता था कि जैसे दोनों एक ही हो, शरीर को कुछ हुए आत्मा को हो गया ऐसा। तो सर्वज्ञ देव ने उन्होंने विदा कर दिया, ऐसा भिन्न भिन्न किया विभाग किया तो दो नहीं से विभाग किया, द्रव्यार्थिक नहीं से और पर्यायार्थिक नहीं से, यानी निश्चय नहीं से और व्यवहार नहीं से, दोनों का अलग अलग नाम कराया और वस्तु स्वरूप भिन्न स्वरूप को वस्तु को साधा साधना भिन्न जीव स्वरूप की साधना किया अति निसंदेह रूप से, कोई शंका रही नहीं ऐसा। और जीव का अनुभव हुआ तो कैसा हुआ कि निधि तो थी लेकिन वो ढंकी हुई ढांके लिए थी, जिन जमीन माँ निधि डाटी हो गरमाते हैं गरना फड़िया में तो ओरडा में टोकड़ो उखड़ो ऊपर थी निधि भरेली थी, एम अंदर माँ अनंत शक्तिओ भरेली से गुण निधि आत्मा गुण निधि से भरा हुआ है, उसको दिखा दिया प्रकट करके दिखा दिया, इतना इतना स्पष्ट दिखाया कह सके, जैसे कोई घर में ढंकी हुई निधि को प्रकट करके दिखावे वैसे ही कर्म संयोग से ढंका हुआ होने से जो मरण को प्राप्त बात बात में भाव मरण और द्रव्य मरण मरण को प्राप्त हो रहा था तो भ्रांति परम गुरु श्री तीर्थंकर देव के उपदेश सुनने पर मिटती है। तो मैं तो मेरी चैतन्य निदेश है भरपूर भरा हूँ शाश्वत हूँ अव्याबाध हूँ, मेरा मरण और बाधा कोई कर सकते हैं, और कर्म संयोग से भिन्न मैं शरीर वाला नहीं, मैं राग वाला नहीं, मैं नसीब वाला नहीं, कर्म संयोग से भिन्न शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव होता है, एकला शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है भिन्न चेतसत्ता का, और ऐसा अनुभव हुए वही सम्यक्त्व है, वही सम्यक्पणा है, अनुभव हुए वही सम्यक्त्व है, अनुभव प्रधान सम्यक दर्शन की परिभाषा है। कैसा है बोध तीर्थंकर देव का उपदेश कैसा है कि स्वरस रमसः कृष्टः, स्वरस मैंने ज्ञान स्वभाव का स्वरस ज्ञान स्वरस नो ज्ञान स्वभाव का रस रभस मैंने उत्कृष्ट अति ही समर्थपणा उससे कृष्ण में पूज्य है। ज्ञान स्वभाव के अनंत सामर्थ्य होने से, स्वभाव के सामर्थ्य अनंत होने से वो पूज्य है, पूजनीय है। पर कैसा है तो प्रस्फुटन प्रकट रूप है, वो कर्मति आच्छादित था, ढंका हुआ था, लेकिन है तो निधि तो प्रगति है, प्रगट रूप है। और कैसा है निधि भरी हुए ना, ऊपर थोड़ी दूर लगे ली हुए कोपड़ो फसेड़े तो अपन, पर निधि तो निधि चौकी है। प्रति समर्पण उससे पूज्य है और प्रगट रूप है। और कैसा है कि एक निश्चय से चैतन्य रूप है, एक मत चैतन्य वेद चैतन्य है, घना गुण छे, अनंत गुण छे। तो गुण वेद थी वेदा तो नहीं, गुण भेद अनंत होने पर भी उसको भेद, उसका भेद नहीं किया जाता, उसको भेद नहीं सकते, वो तो भेद खंड रहता। ऐसा एक है चैतन्य स्वरूप है। यहाँ से स्थिति के विषय में स्पष्ट करके भेद ज्ञान का प्रकरण चालू किया, यहाँ से भेद ज्ञान चालू हो गया। नए विभाग अब जो अनुभव होता है उसकी बात करेंगे।
देवादिदेव श्री मंदन भगवान नो गायो परम पारुषी कान गुरु।